ඔව් 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 විද්‍යාරණ මුනිද්වාර විරචිත පංචදශී के पहले प्रकरण में अभ्यास के लिए 23वां श्लोक बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राण पंचकैर मनसा धिया शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तल्लिंगमुच्यते प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते हिरण्यगर्भतामीश तयोर्व्यष्टि समष्टिता समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्मवेदनात् तदाभावात् ततोऽन्येतु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञको कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगाय तनजन्मने पञ्चीकरोति भगवान् प्रत्येकं व्यदादिकं द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतरद्वितीयं शैर् योजनात् पञ्चपञ्चते तैरण्डहस्तत्र भुवनम् भोग्यभोगाश्रयोद्भवः हिरण्यगर्भः स्थूले अस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत् तैजसा विश्वतां याता देवतीर्यं नरादय ते पराग्दर्शिना प्रत्यक् तत्त्वबोध विवर्जिता हाँ तो हम बता रहे थे सबसे पहले स्वयं सिद्ध स्वयंभू ब्रह्मा परमात्मा उसके आश्रय में रहने वाली अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मिका माया माया में तीन गुण हैं और इसी तीन गुणों के चलते माया के तीन भेद हैं विशुद्ध सत्व मलिन सत्व और तमः प्रधान विशुद्ध सत्व में ब्रह्म का जो प्रतिबिंब पड़ा विशुद्ध सत्व उपाधि सहित प्रतिबिंब का नाम ईश्वर पड़ा ईश्वर की उत्पत्ति ईश्वर की सिद्धि इस तरह हुई है मलिन सत्व में जो प्रतिबिंब पड़ा मलिन सत्व उपाधि सहित प्रतिबिंब का नाम प्राज्ञ पड़ा। मलिन सत्व ही मलिन सत्व को ही वेदांत के प्रसंगों में अविद्या कहा। और उसी मलिन सत्व सहित यानी अविद्या सहित उसमें पड़े हुए ब्रह्म के जो प्रतिबिंब है, आभास है, उस सोपाधिक चैतन्य को प्राज्ञ कहा। ईश्वर ने विचार किया कि ये प्राज्ञ पराधीन हो गया, अपनी उपाधि के अधीन हो गया। मैं अपनी उपाधि के अधीन नहीं हुआ, लेकिन यह प्राज्ञ अपनी उपाधि के अधीन हो गया। ये प्रसंग आप लोग सुन चुके हो, तो उसके लिए उसको कर्ता और भोक्ता बनाने के लिए कुछ उपकरणों का निर्माण करना पड़ेगा। जिन साधनों को, जिन उपकरणों का निर्माण मैं कर दूंगा, तो ये कर्ता और भोक्ता बन पाएगा। तो वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार प्राज्ञ कर्ता और भोक्ता नहीं होता। तब प्रकृति के जो तीसरा भेद था, तम प्रधान प्रकृति, उसको उपादान कारण के रूप में प्रयोग करके ईश्वर ने संकल्प करके सूक्ष्म पांच महाभूतों का निर्माण किया। वियत पवन तेजो अम्बो भूवो भूतानि जगिरे, आकाश वायु, तेज जल और पृथ्वी। ये पांच महाभूत तन्मात्रात्मक हैं, स्थूल नहीं है। अब ईश्वर ने फिर विचार किया कि इनके द्वारा ये प्राज्ञ को कुछ साधन बनाकर दें, करण बनाकर दें, ताकि उसका प्रयोग करके ये कर्ता और भोक्ता बन जाए। सत्वांश ही पंचभिश तेषां, आकाश के सत्वांश से श्रोत्रेन्द्रिय, वायु के सत्वांश से त्वचेन्द्रिय, तेज के सत्वांश से चक्षुरिंद्रिय, जल के सत्वांश से रसन इंद्रिय और पृथ्वी के सत्वांश से प्राण इंद्रिय। इस तरह पांच ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति हुई। बाह्यकरण तो बन गए, लेकिन इनको परिचालन करने वाला अंतःकरण नहीं बना। तो उन्हीं सभी भूतों के सम्मिलित सत्वांश के द्वारा ईश्वर ने प्राज्ञ के लिए अंतःकरण के निर्माण किया, अंतःकरण को बनाया। एक ही अंतःकरण अपने कार्यभेद से काम करने की क्षमता के भेद से दो प्रकार का हो गया, एक का नाम मन रखा और दूसरे का नाम बुद्धि रख दी। हालांकि वेदांत में अंतकरण के चार भाग बताए गए हैं, तो यहां यूं समझ लेना अहंकार और चित्त की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई है। लेकिन विद्यारण्य मुनि जी ने अहंकार और चित्त को पृथक गणना नहीं की, अहंकार को मन के अंतर्भाव कर दिया और चित्त को बुद्धि के अंतर्भाव करके अंतकरण के चार भाग को दो भाग में परिणत करके मन और बुद्धि मात्र को यहां प्रस्तुत किया। इसके बावजूद भी प्रज्ञा, चैतन्य प्रज्ञा आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं बन पाया, तो उन्हें अपंचीकृत पंचमहाभूत में विद्यमान रजोगुण का प्रयोग किया। तो आकाश के रजोगुण से उसने बाकेन्द्रिय बनाया, वायु के रजोगुण से करेन्द्रिय बनाया, तेज के रजोगुणों से पाद इंद्रिय बनाया, जल के रजोगुण से उपस्थ बनाया और पृथ्वी के रजोगुण से वायु बनाया। इन सबको परिचालन करने वाला, जीवंत बनाने वाला प्राण की आवश्यकता पड़ी। तो फिर परमात्मा ने विचार किया कि उन्हीं भूतों के सभी समष्टि रजोगुण का प्रयोग करके एक प्राण बनाई। वो जो प्राण है सूक्ष्म शरीर का अंग है, स्थूल शरीर में जाने पर जब ये प्राण काम करने लगता है तो एक ही प्राण पांच भाग में विभक्त होकर काम करता है। वृत्ति भेदात स पंचधा, काम करने के ढंग के चलते वह प्राण पांच प्रकार का हो गया। कैसे महाराज? तो ये अभी स्थूल शरीर आपका बना नहीं है, ध्यान देना। लेकिन कल्पना करो कि स्थूल शरीर बनेगा तो ये प्राण कहां कहां बैठेंगे। तो स्थूल शरीर बनेगा तो शरीर के हृदय देश होगा, तो मुख्य प्राण हृदय में जाकर बैठेगा, हृदय प्राण। स्थूल शरीर बनेगा तो फिर गुदा इंद्रिय बनेगा, गोलक बनेगा। इंद्रिय तो बन चुका है, गुदा इंद्रिय तो बन गया आपका, है ना, पायु इंद्रिय तो बन चुका है, लेकिन पायु गोलक नहीं बना है। जब पायु गोलक बनेगा तो उस गोलक में पायु इंद्रिय भी जाकर रहेंगे और प्राण का दूसरा भेद अपान भी वहीं जाकर रहेगा। इसी तरह जब आपका स्थूल शरीर बनेगा तो प्राण का तीसरा भेद है वो नाभि मंडल में जाकर रहेगा। नाभिमंडल में जो रहने वाला वायु है उसका नाम हो जाएगा समान। इसी तरह जब आपका पूरा शरीर बनेगा तो पूरे शरीर में त्वचेंद्रिय व्यक्त होकर रहेगा, जो बन चुका है आपका, और उस त्वचेंद्रिय के साथ साथ एक वायु भी पूरे शरीर में व्यक्त होकर रहेगा। उस वायु का नाम होगा ज्ञान वायु। इसी प्रकार से आपका जब शरीर बनेगा तो मस्तक भी बनेगा, धड़ भी बनेगा, गर्दन भी बनेगा, तो उसके अंदर हृदय और मस्तक को जोड़ने वाला एक नाड़ी बनेगी। यूं तो इस शरीर के सभी अंगों को बांधने के लिए 72 करोड़ नाड़ी बनेंगे। हम ध्यान देना है ना, प्रक्रिया में अभी बने नहीं है। 72 करोड़ जब नाड़ी बनेंगे, उन 72 करोड़ नाड़ी के अंतर्गत ज्ञान वायु विचरण करेगा। उसके साथ एक और नाड़ी होगा जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहा जाएगा। उसका उत्पत्ति हृदय से हो रहा है और समाप्ति सहस्रार में जाकर हो रहा है। सतंचयिका हृदयस्य नाड्या तासाम मूर्धानम अभिनिश्रिते का। प्रश्नोपनिषद की प्रक्रिया के अनुसार इन नाड़ियों की चर्चा और इन प्राणवायुओं की चर्चा हुई है। एक सौ एक मुख्य नाड़ियां हैं, उनमें से एक नाड़ी हृदय से मूर्धादेश यानी सहस्रार पर्यंत गमन की हुई है। बाकी 100 नाड़ियों का प्रत्येक 100-100 और प्रति 100 के 72,000 शाखा होकर 72 करोड़ एक नाड़ी टोटल होंगे। द्वा सप्तति प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि भवन्ति तासु व्यानश्चरन्ती। ये प्रश्न उपनिषद का मंत्र है। उन 72 करोड़ नाड़ियों में ज्ञान वायु विचरण करता है और जो एक नाड़ी है जिसकी कोई शाखा प्रशाखा नहीं हुई है, शुरू से ही हृदय से निस्सरण करके सहस्रगामी हुई है, उसके अंदर उदान वायु जाकर बैठता है कंठ देश में। इस प्रकार के ये 5 वायु 5 जगह अलग अलग रहते हैं। किस लिए? कि अलग अलग काम करने के लिए। प्राण वायु हृदय में क्यों रहता है? जीवनी शक्ति को बाहर से अंदर लाना, जिसको मेडिकल साइंस अभी ऑक्सीजन बोलता है, वो जीवनी शक्ति को बाहर से अंदर लेकर जाता है। और अंदर से जो गर्म वायु है, हवा है, जिसको मेडिकल साइंस कार्बन डाइऑक्साइड, जो शरीर के लिए घातक है, उसको बाहर जाते समय लेकर जाता है और फेंकता है। प्राण वायु बाहर जाते समय में शरीर को नुकसान करने वाले भाग को लेकर जब फेंकता है, अंदर आते समय में जीवन के उपयोगी ऑक्सीजन को लेकर आता है। 24 घंटे में 21,600 बार गमन आगमन कार्य करता है। कौन? प्राणवायु। शरीर के अंदर कहां तक? तो हृदय तक। शरीर के बाहर कहां तक? तो नाक और मुख के ठीक 10 उंगली तक बाहर, उसे आगे नहीं जाएगा, और कदाचित गया तो फिर लौट के नहीं आएगा। लेकिन प्राणवायु अपने मर्जी से 10 उंगली का अतिक्रमण करके नहीं जा सकता। उदान वायु साथ में मिलकर गया तो फिर वो गया, नहीं तो नहीं जाएगा, प्राण अकेले नहीं जाएगा। अपान वायु भुक्तम अन्नम त्रिधा विभज्यते, खाए गए अन्न और जल का 3 भाग होता है। स्थूल भाग का मल और मूत्र बनता है, अन्न का स्थूल भाग से मल, जल के स्थूल भाग से मूत्र बनता है। मध्यम भाग से मांस और रक्त बनता है, और सूक्ष्म भाग से मन और प्राण पुष्ट होते हैं। स्थूल जो भाग है शरीर के अनुपयोगी है, इसलिए उसको बाहर निकालने का काम प्राण वायु नहीं करता, अपान वायु करता है, इसलिए वह मूलाधार में रहता है, पायु उपस्थ के संधि में रहता है। तो प्रतिदिन मल विसर्जन करने का काम, मूत्र विसर्जन करने का काम, स्त्री पुरुष सहवास रजवीर्य विसर्जन करने का काम, गर्भस्थ शिशु आदि को निस्सरण करने का काम ये अपान वायु का है। नाभि मंडल में रहकर समान वायु, खाए गए 4 प्रकार के अन्नों को पचाने का काम करता है। समीकरण, समीकरण करने के कारण उसका नाम समान रख दिया गया। पचाने के बाद सूक्ष्म, मध्यम और स्थूल इन 3 भागों को अलग अलग करता है। वो स्थूल भाग को तो अपान वायु के द्वारा बाहर निकालना, मध्यम भाग जो रस है वो उदान वायु का संभरण करके उदान वायु फिर उस रस को समान वायु के द्वारा तैयार किया हुआ अन्न जल का जो रस है उस रस को पूरे शरीर के नख से लेकर शिख पर्यंत फैले हुए 72 करोड़ नाड़ी के माध्यम से सारा शरीर में फैलाने का काम करता है व्यान वायु। व्यान सर्व शरीर गह, यही प्राण के वृत्ति भेद हैं। उदान वायु शरीर में जब तक रहेगा तब तक कुछ नहीं करेगा, उसका होना ही जीवन का सार है। उसका काम क्या है कि शरीर का प्रारब्ध समाप्त हो जाता है जब जीव आत्मा के एक शरीर से जितना भोगना था, जितना करना था, वो सब काम कर लिया गया होता है, भोगा गया होता है। अब प्रारब्ध समाप्त होने पर जीवात्मा को दूसरे प्रारब्धों को भोगने के लिए दूसरे प्रकार के शरीर को ग्रहण करना पड़ेगा। उसके लिए दूसरे प्रकार के शरीर ग्रहण कराने के लिए उदान वायु कंठ देश से हृदय के देश में उतर आता है, और सभी 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, अंतकरण, चतुष्टय और अन्य अपने साथी प्राणों को, प्राण, अपान, समान और व्यानों को सबको इकट्ठा करके वह इस शरीर से उत्क्रमण करता है। उत्क्रमण करने वाला वायु होने के कारण उसको उदान कहा। सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से बाहर निकालने की भूमिका उदान वायु की है। किसकी है बोलो? सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर सहित कारण शरीर, कारण शरीर सहित चिदाभास जिसको जीवात्मा कहा, उसको स्थूल शरीर से, एक स्थूल शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? उदान वायु। ऊर्ध्वम उन्नयनात् वा उदानः, बाहर निकालने के काम, उस निकालने के कारण उसका नाम उदान वायु पड़ा है। और इस स्थूल शरीर से इन सारे तत्वों को बाहर निकालने के बाद ईश्वर संकल्प से खड़ा हुआ आतिवायिक शरीर में प्रवेश करता है। उन्हीं सभी यंत्रों को लेकर वह उदान वायु उस शरीर में प्रवेश करता है और उसी आतिवायिक शरीर में उसकी वासना अनुसार, कर्म अनुसार लोक लोकांतर को गमन करता है। जब तक उसके लिए दूसरे प्रारब्ध भोगने योग्य ईश्वर संकल्प से दूसरा शरीर तैयार नहीं होता, वह शरीर चाहे कुत्ते का हो चाहे भैंस का हो, क्योंकि आपको भैंस के रूप में भोगना हो तो भैंस का शरीर तैयार करना पड़ेगा, कुत्ते के रूप में भोगना है तो कुत्ते का, सुअर के रूप में भोगना हो सुअर का, चाहे वो मच्छर का हो चाहे मक्खी का हो, चाहे हाथी का हो चाहे चींटी का हो। जब आपके प्रारब्ध अनुरूप जो प्रारब्ध तीव्र रूप में सामने आएगा, तद प्रारब्ध भोगने के लिए तद अनुकूल शरीर का निर्माण ईश्वर पंचीकृत पंचमहाभूतों के द्वारा तैयार करता है। जब वो तैयार होता है तब ये आतिवाहिक शरीर उस शरीर के सामने जाता है और उदान वायु फिर आतिवाहिक शरीर से इन्हीं सारे यंत्रों को लेकर निकलता है और उस स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। उस स्थूल शरीर में प्रवेश करते ही वो सारे उपकरण, स्थूल शरीर के किस किस गोलक में रहना है, तत्तत इंद्रियां तत्तत अपने अपने गोलकों में जाकर रहेंगे और खुद उदान वायु उसी तरह जो पहले शरीर में था सुषुम्ना नामक नाड़ी के कंठदेश में जाकर वह बैठता रहता है। कब तक बैठेगा? जब तक उस शरीर से जितने भोगने योग्य प्रारब्ध है तब तक वहां बैठेगा। जब वो प्रारब्ध समाप्त होगा, वो शरीर नष्ट होने होगा, तब फिर उदान वायु उन्हीं सब यंत्रों को इकट्ठा करेगा, फिर उस शरीर से भी निकलेगा, उसके सामने आतिवाहिक शरीर खड़ा होगा, उसमें प्रवेश करेगा, लोक लोकांतर गमन करेगा। जब उसके तीसरे प्रारब्ध से जब कोई भोगने योग्य शरीर तैयार होगा, वो शरीर उसी तरह जिस तरह प्रारब्ध के द्वारा भोगना है, तो ऊंट का होगा, सर्प का होगा, स्त्री का होगा, पुरुष का होगा, है? फिर उस शरीर में प्रवेश करेगा उदान वायु। प्रवेश करके वही सुषुम्ना नामक नाड़ी में जाकर अपने आप बैठ जाएगा और उसके बैठने से सभी यंत्र, अन्य ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियां, अन्य प्राण और अंतकरण चतुष्टय अपने अपने काम करने लग जाएंगे। एक क्रम अनादिकाल से और अनंत काल पर्यंत जब तक उस जीवात्मा को तत्वबोध नहीं होगा, ध्यान देना है, जब तक उस जीवात्मा को तत्वबोध यानी स्वरूप ज्ञान अपरोक्ष अनुभव नहीं होगा, और जब अपरोक्ष अनुभव होगा तब जाकर उसके क्रियमाण और संचित सारे प्रारब्ध और वासनाएं प्रारब्ध को छोड़कर क्रियमाण और संचित सभी कर्म नष्ट हो जाएंगे, मूला विद्या नष्ट होगा, तब फिर उस उदान वायु को शरीर से अन्य यंत्रों को लेकर उत्क्रमण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए वह उत्क्रमण नहीं करेगा, उसके बाद उसका काम खत्म। ये वेदांत की प्रक्रिया है। अब आप लोगों को कितना समझ में आ गया, तो ये विचार करने की चीज है। तो यहां सूक्ष्म शरीर के बारे में कह रहे हैं, बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राण पंचकैर मनसा धिया। अभी तक ईश्वर की कृपा से बुद्धि माने ज्ञान, ज्ञान पंचकम है ना, बुद्धि कर्मेन्द्रिय प्राण पंचकम कहा ना, ये पंचकम को सभी के साथ जोड़ लेना। बुद्धि पंचकम माने ज्ञानेन्द्रिय पांच, कर्मेन्द्रिय पंचकम माने कर्मेन्द्रिय पांच, प्राण पंचकम माने जो अभी अभी तैयार हुए प्राण पांच, तो त्रिपंचक हो गए, तो हो गए टोटल पंद्रह। मनसा धिया, मन और बुद्धि ये सप्तदश भी ही, ये जो सत्र चीज है, सप्त और दस सत्र, ये सप्त और दस सप्तदश भी ही मिलकर सबको मिलाकर क्या हुआ, सूक्ष्मम शरीरम, उस प्राज्ञ के लिए सूक्ष्म शरीर की तैयारी हुई। कारण शरीर पहले बन गया था जिस समय वह प्राज्ञ बना था, समझ गए कि नहीं। तम प्रदान प्रकृतेश ना अविद्या वशगस्तु अन्य, अविद्या में प्रतिबिंबित पड़ा, मलिन सत्व में पड़ा, तो उसी समय में मलिन सत्व ही उस प्राज्ञ के लिए कारण शरीर बन गया था। सा कारण शरीरम स्यात् प्राज्ञस्तत्राभिमान। अब दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर तैयार हो गया, तो आपके अभी तक कितने शरीर बने, दो शरीर बने, समझे कि नहीं, कारण और सूक्ष्म शरीर बन गए। कारण शरीर अविद्या या मलिन सत्व, सूक्ष्म शरीर ये सत्र सप्तदश भी सत्र चीज से बन गया आपका। सूक्ष्म शरीर के अंदर आपके कितनी चीज हैं, पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, पांच कर्मेन्द्रिय हैं, पंच प्राण हैं और मन बुद्धि हैं। उप अध्यार कर लेना, चित्त अहंकार भी ले लेना है। इसको वेदांत में दूसरे शब्द से भी कहते हैं, वो दूसरा शब्द है लिंग शरीर। सूक्ष्म शरीर अर्थात लिंग शरीर। सूक्ष्म शरीर इस अर्थ में कि वह चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। सूक्ष्म शरीर इस अर्थ में कि वह अतीन्द्रिय है, समझे कि नहीं। सूक्ष्म शरीर किसी भी इंद्रिय से जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसको अतीन्द्रिय कहा। अतीन्द्रिय होने के कारण उसको क्या कहा, सूक्ष्म कहा। लिंग इस अर्थ में कहा उसको, क्योंकि उसके माध्यम से अन्य को यहां आत्मा है ये भान हो पाता है। ध्यान देना, आत्मा जब तक कारण शरीर में रहेगा, प्राज्ञ के रूप में रहेगा, दूसरे को आत्मा है ये भान नहीं हो पाएगा। इसलिए कारण शरीर को लिंग नहीं कहा गया। आत्मा होने का भान नहीं होगा जब तक केवल कारण शरीर में आप रहेंगे। दूसरे को पता नहीं चल पाएगा कि यहां आत्मा है। इसीलिए जैसे कोई व्यक्ति किसी विशेष स्ट्रोक से चलते डीप कोमा में चला गया, समझ गए ना, और डीप कोमा में भी गया और उसको उसके अभिभावकों ने यंत्र में ले जाकर वेंटिलेटर पर रख दिया। ध्यान देना, और वेंटिलेटर जो मशीन है उसके चलते उसके शरीर में प्राण स्पंदन हो रहा है, लेकिन मशीन के द्वारा चलाए जाने वाला वो शरीर की क्रिया, प्राणन क्रिया, धमनी, हार्ड, उससे ये निश्चय नहीं हो पाएगा कि आत्मा है, ये निश्चय नहीं हो पाएगा। इसलिए कई बार जीवात्मा स्थूल शरीर से निकलकर जा चुका होता है, फिर भी यंत्र से उस शरीर की क्रियाओं को चलाते रहते हैं, फिर भी चल रहा है। तब पता चलता है कि वो जा चुका है, जब उसको यंत्र से अलग कर देते हैं, यंत्र से अलग कर देते हैं तो कोई क्रिया ही नहीं होती। तब डॉक्टर क्या कहता है, ये खत्म हो गया। अरे भाई खत्म तो पहले ही हुआ था, बहुत पहले हो गया था, और तुमने आज तक क्यों रखी है। तो उसके यंत्र से चलाए हुए शरीर के वायु को ही वो आत्मा मान रहा था, इसलिए डॉक्टर तो ग्राफ देखता था, ग्राफ चल रहे हैं तो ग्राफ तो हवा से चलता रहेगा। मशीन से चल रहा था तो लिंगम, बिना मशीन से ये होने का प्रमाण सूक्ष्म शरीर रहेगा तो यहां आत्मा है ये भान रहेगा, सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा तो लोग कहेंगे कि अब आत्मा नहीं रहा। पहले नाड़ी पकड़ा जाता था, मृत व्यक्ति के नाड़ी पकड़ते थे, हाँ नाड़ी चल रही है तो है, नाड़ी बंद हो गई तो गया। तो ये सूक्ष्म लिंग शरीर का अभिप्राय ये है, इसको इस तरह व्युत्पत्ति करते हैं, लीनम अज्ञातम अव्यक्तम अर्थम गमयति बोधयति इति लिंग। अव्यक्त होकर रहा हुआ जो आत्मा है उसको व्यक्त करके यहां है ये किस प्रकार के बोध कराने का साधन होने से सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर कहा है। अब उस सूक्ष्म शरीर में, लिंग शरीर में तैयार हो गया ना ईश्वर की कृपा से, तम प्रधान प्रकृति से, आकाश आदि सूक्ष्म पांच महाभूत, उन पांच महाभूतों में से सत्वगुण और रजोगुणों के माध्यम से पूरे लिंग शरीर तैयार कर दिया। लिंग शरीर तैयार होते ही वो कारण शरीर में रहा हुआ प्राज्ञ नाम का जीवात्मा तुम उसमें आ गए, तैयार हो गया ना वो। तैयार होते ही उसमें प्राज्ञा का प्रतिबिंब पड़ा, यानी प्राज्ञा का प्रवेश हो गया। वो बात 24वें श्लोक के द्वारा विद्यारण्य मुनि जी कहते हैं, प्राज्ञस्तत्राभिमानेन, तत्र माने उस लिंग शरीर में प्राज्ञा प्रवेश किया, और लिंग शरीर में प्राज्ञा के आने पर लिंग शरीर पूरा का पूरा क्रियाशील हो गया, चैतन्यवान हो गया। इसी को भागवत में ध्रुव ने परमात्मा की स्तुति करते हुए यूं कहा, युअंत प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्व नाम्ना अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। ध्रुव ने परमात्मा की स्तुति करते कहा कि हे परमात्मा, संसुप्त इंद्रियों को, निष्क्रिय इंद्रियों को आपके प्रवेश द्वारा ही सक्रिय बना दिया। हस्त चरण श्रवणत्व आदि सब क्रियाशील हो गए आपके प्रवेश करते ही, और आप प्रवेश न करते तो ये जड़ के जड़ ही रह जाते। हालांकि वहां ध्रुव ने प्रवेश करने का काम परमात्मा का है ऐसा कहा, लेकिन प्रसंग के अनुसार सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने का काम प्राज्ञ का है। और यह ध्यान देना, मांडू के उपनिषद में प्राज्ञ को ही ईश्वर कहा है, तत्र सुप्त न कंचन कामम कामयते न कंचनम पश्यति तत्सुसुप्त। और वही ये स सर्वेश्वर, ये स सर्वज्ञ, ये स सर्व अंतर्यामी आदि करके मांडुक्य उपनिषद में प्राज्ञ को ही ईश्वर, सर्वेश्वर, सर्वअंतर्यामी आदि के रूप में संबोधन किया है। और शायद इसी भाव से प्राज्ञ को ही प्रहलाद जी ने ईश्वर का, परमात्मा कह दिया। हालांकि ये वेदांत की प्रक्रिया, पंचदशी की प्रक्रिया के अनुसार ईश्वर अलग चीज है, प्राज्ञ अलग चीज है। ईश्वर और प्राज्ञ अलग होने में कारण क्या है? उपाधि के डिफरेंस है। ईश्वर अलग इसीलिए कि उसकी उपाधि विशुद्ध सत्व है, प्राज्ञ अलग इसीलिए है कि उसकी उपाधि मलिन सत्व है। ईश्वर अलग इसलिए है कि उसकी दूसरी उपाधि समझती है, और प्राज्ञा अलग इसलिए है कि उसकी दूसरी उपाधि व्यष्टि है। यहां वही बात कहने जा रहे हैं, उस सूक्ष्म शरीर में दो आदमी ने प्रवेश किया। ध्यान देना, उस सूक्ष्म शरीर में दो आदमी ने प्रवेश किया। पहला प्रवेश किसने किया? प्राज्ञ ने। प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते। पहले केवल कारण में शरीर में था वह आत्मा, तो उसका नाम केवल प्राज्ञ रह गया था। अब वो प्राज्ञ सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया तो उसका नाम बदल गया, क्या हुआ? तैजस। प्राज्ञ तैजस हो गया। सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते ही प्राज्ञ तैजस हो गया। एक तो प्राज्ञ ने प्रवेश किया और इसलिए प्राज्ञ तैजस हो गया, दूसरा सूक्ष्म शरीर पूरी दुनिया में एक तो है ही नहीं, लाखों करोड़ों अरबों खरबों हैं, अनगिनत हैं, समझे कि नहीं, अनगिनत है। तब सभी सूक्ष्म शरीर में ईश्वर ने भी प्रवेश किया। प्राज्ञ ने तो प्रवेश किया ही किया है, प्राज्ञ के साथ साथ उस सूक्ष्म शरीर में ईश्वर ने भी प्रवेश किया। प्राज्ञ एक ही शरीर में सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके यही मेरा स्वरूप है कहने लग गया, इसलिए उसका नाम हो गया तेजस। ईश्वर एक ही समय में सारी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भमी गर्भताम ईश, ईश ईश्वर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने से उसका नाम क्या हुआ, हिरण्यगर्भ पड़ गया। तो किसी ने प्रश्न किया होगा, महाराज सूक्ष्म शरीर में प्राज्ञ ने भी प्रवेश किया और ईश्वर ने भी प्रवेश किया, दोनों ने प्रवेश किया तो दोनों का नाम एक ही होना चाहिए था, कि दो अलग अलग नाम क्यों रख दिया। ईश्वर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके हिरण्यगर्भ हो गया, प्राज्ञ हिरण्यगर्भ क्यों नहीं हुआ, या प्राज्ञ सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके तेजस हो गया, ईश्वर तेजस क्यों नहीं हुआ, तो उसका उत्तर दिया विद्यारण्य मुनि जी ने। फर्क होने में कारण यह है कि एक सूक्ष्म शरीर में अभिनिवेश करने वाला मैं हूं कहने वाला होने के कारण प्राज्ञ सिर्फ तेजस होकर रह गया, सभी सूक्ष्म शरीर में मैं हूं कहने के कारण ईश्वर हिरण्यगर्भ हो गया। तो अब देख लो, एक ब्रह्म से चार चीज पैदा हो गए, कौन कौन से, ईश्वर प्राज्ञ और तेजस और हिरण्यगर्भ, माया और अविद्या के चलते ईश्वर और प्राज्ञ तैयार हुआ, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर और समष्टि सूक्ष्म शरीर के चलते तेजस और हिरण्यगर्भ तैयार हो गए, और बाकी विचार करते जाओ भाई, अब किस किस को तैयार करते हो देखा जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।